पृष्ठ संख्या 108 अध्याय 5 दक्षिण के हिंदू सुधारक 2। दक्षिण में शंकर और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विकसित की गई भारतीय पद्धतियों और मुस्लिम धर्मशास्त्र तथा रहस्यवाद की विचारधाराओं में जो सादृश्य है वह चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि दोनों विचारधाराओं का विकास एक ही प्रकार से हुआ। भारतीय मस्तिष्क ने श्रुति से प्रारंभ किया और मुस्लिम मस्तिष्क ने कुरान से। दोनों ने कर्म का आदेश दिया और विवेक संगत होने के दौर से गुजरते हुए भक्तिमय और भावनमय धर्म की ओर गए। शंकर के पूर्ववर्ती सबरा और कुमारील मीमांसक थे, जिन्होंने कर्म और यज्ञ के धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। उनका उदय प्राचीन भारतीय धार्मिक चिंतन का एक मोड़ है। शंकर ने इस नए आंदोलन के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया और एक निश्चित दिशा दी, जिस पर बाद के युगों में हिंदू मस्तिष्क काम करता रहा। शंकर पूर्व या प्राचीन काल और शंकर के बाद या मध्य काल के बीच धार्मिक इतिहास के पहलुओं में बहुत अंतर है। प्राचीन काल में एक धर्म नहीं बल्कि कई धर्म हैं, ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ब्राह्मणवाद स्वयं एक विचित्र अस्थिरता की स्थिति में है। उसके देवकुल में कम से कम तीन प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था, शिव, विष्णु और शक्ति। पहले वे वेदों का रुद्र अपने विस्तारित डैनों के नीचे पहाड़ों और जंगलों, हिमालय, विंध्या और तमिल प्रदेश के देवताओं को समेट लेता है। आतंक का रक्तवर्ण स्वामी और रोग मुक्ति का उज्जवल स्वामी एक हो जाते हैं। भयानक मानव बलि और पशु बलि तथा वैदिक अनुष्ठान एक हो जाते हैं। कबीलों के जादू टोने और सभ्य लोगों के दर्शन एक हो जाते हैं और ये सब मिलकर रचना करते हैं महाभारत के शिव की, पाशुपत और वैसा ही दार्शनिक पद्धतियों की और शैव पंथों की। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में वैदिक विष्णु, सातवतों का वासुदेव, यादवों का कृष्ण, अभीरों का गोपाल कृष्ण, एकांतीन ईश्वर की एक अवधारणा में समाहित हो जाते हैं। विभिन्न कबीलों के पंत भागवत और पंचरात्र उपासना में विलीन हो जाते हैं और इन सब का चिंतन भगवत गीता तथा वैष्णव संहिताओं में विलीन हो जाता है। शाक्त दर्शन, उपासना और पंथ शिव पंथ जैसा ही मार्ग अपनाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पड़ोसी संप्रदाय के प्रभावों से और बाहरी तत्वों के आत्मसात होने से जटिलताएं पैदा होती हैं, जिनके संबंध में अन्यत्र लिखा गया है। प्राचीन काल में लगातार चलने वाली ये प्रक्रियाएं मस्तिष्क पर अत्यंत जटिल और भ्रामक प्रभाव छोड़ती हैं। यद्यपि समय बीतने के साथ भ्रम की यह स्थिति सुलझने लगती है। कुछ समाज विज्ञानियों के अनुसार प्रारंभ के सभी धर्म एक ईश्वरवादी थे और हर कबीले का एक देवता होता था जिसकी वह उपासना करता था। युद्ध के कारण या जीवन के साधनों के लिए संघर्ष के कारण जैसे जैसे कबीले आपस में मिले उनके देवता पास आए और अनेकेश्वरवाद उत्पन्न हुआ। और जब संयुक्त कबीले एक रूप हो गए और उनमें एकजुटता आई तो कई देवता एक प्रमुख देवता में समाहित हो गए। यदि यह सिद्धांत सही है तो यह भारत के तीन देवताओं शिव, विष्णु और शक्ति के उदय की प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। जब बर्बर हुणों को गुप्तों ने पराजित कर दिया, उसके बाद आगामी 500-600 सालों में बड़ी तादाद में विदेशी कबीलों का भारत में आगमन नहीं हुआ, जो मुस्लिम पश्चिमी तटों पर या समुद्र तटों पर 8वीं सदी के बाद बस गए थे। वे छोटे समुदायों के रूप में आए थे और उन्होंने स्थायी बसी आबादी पर कोई बड़ी उथल पुथल नहीं पैदा की। इसलिए विचारों और धर्म के अस्थिर स्वरूप को स्थिर होने का समय मिल गया। प्राचीन काल में भारत के निवासी कई कबीलों में विभाजित थे, जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र थे और सांस्कृतिक रूप से भिन्न थे। जैसा कि वैदिक और बौद्ध काल का साहित्य स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, सिथियनु, यूची, हुण और अन्य लोगों के प्रवेश ने पहले से विद्यमान विविधता को और बढ़ा दिया। कबीलों और उनकी संस्कृतियों का समन्वय प्राचीन इतिहास के विभिन्न कालों में हुआ। गुप्त काल में अंतिम संश्लेषण हुआ और उसने ब्राह्मणवाद को ऐसी एकता प्रदान की जिसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति महाभारत है और धार्मिक अभिव्यक्ति त्रिमूर्ति का प्रतीक है। शंकर ऐसे समय में पैदा हुए जब एक संशोधन हो चुका था और हिंदू धर्म अपने प्रतिद्वंदियों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार वह समय की उपज था, किंतु वह एक नए युग का प्रवर्तक था। उसके पूर्ववर्ती लोगों के परिश्रम से एकेश्वरवादी उपासना स्थापित हो चुकी थी, किंतु उसे दर्शन के एक मजबूत आधार पर स्थापित किया जाना था, जिससे न केवल इच्छा बल्कि बुद्धि भी उस पर विश्वास करने लगे और उसका स्थायित्व सुनिश्चित हो जाए। इस एकेश्वरवादी प्रवृत्ति की स्थापना को इस्लाम जैसे अत्यंत कठोर एकेश्वरवादी धर्म के उदय से बहुत बल मिला। शंकर ऐसे समय में पैदा हुए जब मुस्लिम लोग भारत में अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर रहे थे और यदि परंपरा को सही माने तो तब उन्होंने इस धरती के राजा को इस्लाम में दीक्षित करके अपने धर्म के विस्तार में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर ली थी। उनका जन्म और पालन पोषण ऐसे स्थान में हुआ था जिसके पास अरब और फारस खाड़ी से कई जहाज आते थे। यदि उनके कट्टर एकेश्वरवाद में ईश्वर को द्वैधता के सभी प्रतीकों से मुक्त करने में वेदों के आधार पर एकेश्वरवाद को स्थापित करने की उनकी कोशिश में, संप्रदाय को कई दोषों से मुक्त करने की उनकी इच्छा में, बाहर से आने वाली नई ध्वनियों की किंचित भी प्रतिध्वनि थी जो बहुत आश्चर्य या अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, किंतु शंकर का जीवन गाथाओं में लिपटा है और यह स्थापित करने के लिए कैसा भी सीधा प्रमाण नहीं है इस्लाम के साथ उनका कोई संबंध था। उनके उत्तराधिकारी रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्व और निम्बार्क और भजनों के रचयिता अपनी कल्पनाओं और धार्मिक स्वर से ज्यादा समानांतर दिखते हैं। मुस्लिमों और भारतीयों में संस्कृति के आदान प्रदान में प्रत्येक के अंशदान का अनुमान लगाना कठिन है। यह सच है कि मुस्लिमों ने भारत में कई विचार प्राप्त किए और संभवतः भारत ने इस्लाम के जरिए अपने ही योगदान का परावर्तन प्राप्त किया। यह सत्य है कि ईसाई धर्म और नव प्लेटोवादी विचारों ने इस्लाम को गहराई से प्रभावित किया और इसलिए कुछ लेखकों को हिंदू धर्म में उन प्रणालियों के चिन्ह मिलते हैं, किंतु सच्चाई यही है कि इस्लाम से सीधा संपर्क होने से हिंदू धर्म में कई नए तत्व आए और इन तत्वों को इस्लाम की छाप के साथ भारत में प्रस्तुत किया गया। रामानुज के समय मुस्लिम लोग कोरोमंडल समुद्र तट में पाए जाते थे। नथद वली के समान मुस्लिम संत लोगों को इस्लाम की शिक्षा दे रहे थे और उनमें से बहुतों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे और कुन पांडे जैसे हिंदू राजा उन्हें मस्जिदें बनाने के लिए भूमि का अनुदान दे रहे थे। मलईपुरम में ईसाइयों का अस्तित्व संदेहास्पद है और उस धर्म के विकृत रूप को मानने वाला प्रभावहीन समुदाय अपने पड़ोसियों के विचारों पर शायद ही कोई प्रभाव छोड़ सकता था, जैसा कि बार्थ ने इंगित किया है। ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद ने हिंदुओं को प्रभावित नहीं किया। रामानुज का दर्शन सद्गुणी ईश्वर को मानता था और उसकी उपासना में आस्था और भक्ति विद्यमान थी। रामानुज उन वर्गों के लिए भी धर्म के द्वार खोलने की इच्छा रखते थे जिनके लिए अभी तक ये दरवाजे बंद थे। प्रेम मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंधों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच में भी पाया जाता है। हालांकि मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम के प्रमाण कम है। ईश्वर और मनुष्य की प्रकृति को लेकर विष्णु स्वामी, निम्बार्क और मध्व के बीच जो आध्यात्मिक शास्त्रार्थ हुए, उनसे नज्जाम, आहारी और गजाली के विवादों का स्मरण हो जाता है, किंतु ये समानताएं अवास्तविक हो सकती हैं या पड़ताल के अपने स्वरूप के कारण भी हो सकती हैं और किसी सांस्कृतिक ऋण के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 9वीं सदी के बाद दक्षिण भारत के चिंतन की कुछ अन्य विशेषताएं इस्लामी प्रभाव की ओर दृढ़ता से इंगित करती हैं। ये हैं एकेश्वरवाद पर बढ़ता जोर, भावुकतापूर्ण उपासना, प्रपत्ति और गुरु भक्ति। और इसके अलावा जाति प्रथा की कठोरता में कमी और कर्म कांड के प्रति उदासीनता। पहले बिंदु के बारे में विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। अवधारणा प्राचीन थी किंतु वह सर्वोपरि नहीं थी। व्यवहारिक धर्म का अर्थ था कि या तो अच्छे कर्म और यज्ञ किए जाए या आत्मीय संबंध स्थापित किए जा सकने योग्य किसी ईश्वर पर निर्भर हुए बिना योग की पद्धति को अपनाया जाए। यही धर्मशास्त्रों, महाभारत और सांख्य योग दर्शन की शिक्षा है। उपनिषद और रूढ़िहीन भागवतवाद इसके अपवाद थे। वे एक छोटे से रहस्यवादी समुदाय को ही रास आते थे जो वैदिक ब्राह्मणवाद की परिधि से तब तक बाहर रहे जब तक वे उसकी परिधि के भीतर नहीं आ गए और उनकी प्रणाली को मान्यता प्राप्त नहीं हो गई। दार्शनिक धर्म अमूर्तता के जगत में वास करता था और केवल व्यवहारिक जरूरतों के कारण ही वह ईश्वर की अवधारणा को मानता था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत कुछ अनिश्वरवादी थे। केवल बाद के काल में महायान संप्रदाय ने ईश्वरवादी पंथ विकसित किए, किंतु अनेक संप्रदायों में से एक अमिताभ की उपासना भी थी। मध्यकाल में एकेश्वरवाद भारत का प्रचलित धर्म बन गया। एक ईश्वर को शिव, विष्णु या अन्य किसी नाम से संबोधित किया जा सकता है और ईश्वर के अस्तित्व, सृजन और मनुष्य के से उसके संबंध के बारे में अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, किंतु वह ऐसा है जो सबके ऊपर है, फिर भी वह एक व्यक्तिगत ईश्वर है। इसके अलावा व्यक्तित्व की अवधारणा भिन्न हो सकती है। वह राजा, स्वामी, पिता या माता, मित्र या गुरु, प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है। उसके साथ मानवीय संबंध हर स्थिति में भावुक और अक्सर कोमल होते हैं। भावुकता प्रारंभ में शांत और नियंत्रित होती है और बाद में वह प्रबल, आक्रामक और उत्कट होती है। अलवारो की कविताएं धर्म में बाहरी आचरण, उपवास और तीर्थ यात्रा की और कभी कभी मूर्ति पूजा और उपासना में असमानता की निंदा करते हैं। रामानुज ने शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया और उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए आत्मसमर्पण अर्थात प्रपत्ति की भावना का और गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया। सुधार आंदोलन के ये तत्व शायद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कारण हो सकते हैं, क्योंकि बाद के दिनों में ये दोनों धर्म आडंबर और मूर्ति पूजा में से जकड़ गए थे, जो सचमुच उनके पतन का एक कारण था। इन बातों की को उस समय प्रचलित हिंदू धर्म से शायद ही लिया जा सकता था, क्योंकि विष्णु, शिव और शक्ति की उपासना और अन्य वैदिक पंथ कर्मकांडी थे। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के पुराने और शुद्ध रूप से और उपनिषदवाद से संबंध हो सकते थे, किंतु प्रपत्ति और गुरु भक्ति नहीं। प्रपत्ति का विचार रामानुज की विचारधारा में महत्व प्राप्त कर लेता है। उनके समय भक्ति की अनुमति तीन ऊंचे वर्गों की थी, किंतु शूद्र को उसकी अनुमति नहीं थी। शूद्रों को प्रपन्न कहा गया है, जो वह स्वयं को दीन और असहाय समझकर ईश्वर की शरण लेता है। वे सभी सांसारिक चीजों को त्याग कर स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और गुरु के मार्गदर्शन की कामना करते हैं और उससे कर्म की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाद में प्रपत्ति के प्रश्न पर वैष्णव दो शाखाओं में विभाजित हो गए और निम्बार्क ने ईश्वर की कृपा प्राप्त करने कि इस पद्धति को बहुत महत्व दिया। प्रपत्ति गुरु भक्ति से निकटता से संबंधित है। इसमें स्वयं को गुरु की कृपा के प्रति समर्पित कर दिया जाता है और हर बात में उसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। भंडारकर का मत है कि इन दोनों तत्वों के चिन्ह ईसाई धर्म में खोजे जा सकते हैं, किंतु इस बात की बहुत संभावना है कि ये इस्लाम से आए। ये दोनों बातें उस धर्म के बहुत मुख्य तत्व थे। इस्लाम का अर्थ है समर्पण और मुस्लिम वास्तव में प्रपन्न है। यह बता दिया गया है कि ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मुस्लिम धार्मिक चेतना का अनिवार्य हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से भी इस बात को मानने में कोई खास कठिनाई नहीं है कि रामानुज ने इसे इस्लाम से लिया। गुरु भक्ति के जरिए ईश्वर में विलीन हो जाना भी एक महत्वपूर्ण मुस्लिम अवधारणा है। इसे शियाओं ने शुरू किया था और उनसे सूफियों ने लिया, किंतु यह तर्क दिया जा सकता है कि गुरु के प्रति सम्मान तो एक प्राचीन भारतीय विचार है। अधिक पीछे जाए बिना उसे गृह सूत्र और धर्म शास्त्रों में पाया जा सकता है। इनमें गुरु और ब्रह्मचारी के बीच के संबंधों को नियंत्रित करने के नियम दिए गए हैं। विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गुरु का सम्मान पिता से ज्यादा करें और विद्यार्थी जीवन में उसके प्रति पूर्ण आज्ञाकारी रहे और पूरे जीवन उसके प्रति सम्मान रखे। यहाँ तक कि गुरु की तुलना ईश्वर से की गई है, किंतु शिष्य द्वारा गुरु को दिया जाने वाला यह प्राचीन सम्मान वही नहीं है जो आध्यात्मिक निर्देशक के प्रति होता है, जो मानव होने पर भी दैवी है, जो गुरुओं की पदक्रम श्रृंखला की एक कड़ी है और प्रत्येक का उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्ती से प्रेरणा प्राप्त करता है और संप्रदाय की परंपराओं का रक्षक होता है, जिसमें एक बार प्रवेश लेने के बाद नवागत सदैव के लिए उसका हो जाता है। गुरु को देवत्व देने की यह सूफी अवधारणा मध्यकालीन हिंदू धर्म में ले ली गई। आनंद गिरी की शंकर को शिव का अवतार मानने की अवधारणा, अलवारो और आचार्यों को विष्णु या उनका अंश मानना और उमापति का गुरुवाद, ये सभी सूफी विचारों का आत्मसातीकरण है। उनसे यह विचार सारे भारत में फैला। फलतः एक आधुनिक लेखक कहता है, हिंदू धार्मिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु को जितना ऊंचा सिंहासन दिया गया और समुदाय को उस पर सभी दुख सुख और सुख के लिए जो अटूट श्रद्धा है, उससे अधिक अजीब बात अन्य नहीं दिखती। अर्थ पंचिका का आचार्याभिमान योग और रामानुज की प्रणाली ईसाई धर्म से नहीं बल्कि इस्लाम से उधार लिए गए थे। दक्षिण भारत में 9वीं से 14वीं सदी तक नए विचारों का उदय होना और कुछ पुराने विचारों पर जोर दिया जाना बहुत विचित्र है। ऐसी बातें उत्तर में घटित नहीं हुई, क्योंकि मध्यकाल के सभी सुधारक दक्षिण के थे। यदि ऐसा नहीं माना जाता, इसका एक कारण इस्लाम का वह प्रभाव था जो दृढ़ता से और अधिकाधिक इस काल में ही और इस क्षेत्र में ही प्रकट हो रहा था और यूरोपीय लोगों के आते ही एकाएक समाप्त हो गया। तो जो कुछ हुआ उसका कारण बताना कठिन हो जाएगा। यह तब और भी कठिन हो जाएगा यदि हम देखते हैं कि सुधारक कैंची उन हिस्सों में ही चलाई गई जो इस्लाम द्वारा शापित थी, और जो नई बातें उपलब्ध हुई वे बातें वही थी जो उस धर्म की सबसे महत्व की थी। दक्षिण छोड़ने से पहले दो उन संप्रदायों पर भी चर्चा करना उचित होगा जिनमें ऊपर चर्चित अन्य संप्रदायों की अपेक्षा इस्लाम का प्रभाव ज्यादा दिखता है। ये हैं लिंगायत या जंगम और सिद्धारा। लिंगायत स्वयं को प्राचीन शैव संप्रदाय का मानते हैं। शैवों की कई शाखाओं में से किसी ने उनका प्राचीन संबंध होने पर संदेह किए बिना और यह स्वीकार करते हुए कि आराध्यों ने एक संशोधित वैष्णव धर्म को पुनर्गठित करने का शीघ्र प्रयास किया। यह माना जा सकता है कि कट्टर लिंगायतवाद का उदय 12वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन के नेता कौन थे? बसावा और उनके भतीजे चन्न बसावा को सब लिंगायत मान्यता देते हैं। डॉक्टर फ्लीट अबलूर में प्राप्त लगभग 1200 ईस्वी के एक शिलालेख के आधार पर कहते हैं कि एकांत रामैया ने बसावा के साथ बसावा के साथ इस संप्रदाय की स्थापना की थी। कहा जाता है कि हरीश्वर राघवनिका और केरया पद्मराज नाम के बल्लाल राजाओं के दरबार में रहने वाले कुछ शैव कवियों ने ऐसे ही विचारों का पोषण किया, किंतु बसावा चाहे इस पद्धति का वास्तविक संस्थापक रहा हो या न रहा हो, वह इसका सबसे शक्तिशाली समर्थक और प्रवर्तक था। जनश्रुतिकार इतिहासकारों के परस्पर विरोधी विवरणों से उसके जीवन का सभी विवरण निकालने की जरूरत नहीं है। यह जानना पर्याप्त है कि वह कल्याण के शासक विज्जल का मंत्री था। दरबार और राज्य पर ब्राह्मण और जैन प्रभाव बहुत था और बसावा उन दोनों का कट्टर शत्रु था। ऐसी स्थिति में टकराव अपरिहार्य था और बिज्जल और बसाव दोनों आपसी शत्रुता के शिकार हुए। बसावा का भतीजा चन्न बसावा ने अपने चाचा की मृत्यु के बाद भी प्रचार जारी रखा। बसावा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का व्यापक और स्थायी प्रभाव पड़ा। कलचुरियों का पूरी तरह पतन हो गया, इसलिए कल्याण जल्दी होयसलों के साथ में चला गया और उनसे यह राज्य उत्तर से आने वाले मुस्लिम विजेताओं के हाथ में चला गया। बसावा की पद्धति मूल रूप से विद्यमान धार्मिक विचारों की पूर्ण विरोधी थी। सिद्धांत कर्मकांड और सामाजिक रीति रिवाजों में यह पद्धति इतनी क्रांतिकारी थी कि उसकी साहसपूर्ण मौलिकता का स्वर कम करने के सारे प्रयासों के बाद भी लिंगायत उसकी वैयक्तिकता कम करने में या रूढ़िवादी हिंदू धर्म में उसका पूरी तरह समन्वय करने में सफल नहीं हुए। लिंगायत एक ईश्वर की उपासना करते हैं, वह अनंत स्वतंत्र अगोचर प्रखर प्रभावान परमानंद श्रेष्ठतम परिवर्तनहीन और सभी भौतिकता से परे है। वह आत्माओं और प्रकृति का निर्माता है, जिन्हें परमेश्वर की आत्माभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। वह अल्लामा प्रभु के रूप में और आत्मा के मार्गदर्शक के रूप में है। मानव गुरु बसावा उद्धारक का अवतार है, जिसकी देवत्व उसके उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को हस्तांतरित होती है। उनमें से पहले चार का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है, रेवान, मरूल, एकोराम और पंडित। ब्राउन के अनुसार वे मुसलमानों के चार पीरों के समकक्ष हैं, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने गए हैं। जो वे किसी मुसलमान को मुरीद बनाने के समारोह में वही भूमिका अदा करते हैं जो संगम बनाने में चार आराध्य करते हैं। उनका वर्णन भी धर्म द्वितीय क्रम में किया गया है। गुरु नवागत को धर्म में दीक्षित करता है। दीक्षित करने के नियम मुसलमानों में प्रचलित नियमों के समकक्ष ही हैं। प्रेम ईश्वर की पहली रचना है। भक्ति मानव जीवन के लक्ष्य को पाने का माध्यम है। यह ईश्वर के प्रति एक आकर्षण है और आत्मा की प्रगति के तीन चरण हैं। पहला चरण तटस्थता का चरण है, जिसमें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, शपथों और नियंत्रण का अनुशासन और कर्म कांड तथा भक्ति का प्रचलन होता है। दूसरे चरण में अहम त्याग, ईश्वर के प्रति एकाग्रता, समर्पण और शांति तथा तीसरा चरण परमानंदी एकता का आनंद और स्वयं और प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देखना सम्मिलित है। जंगमों के रिवाज अष्टवर्णनम में बताए गए हैं। ये हैं गुरु, लिंगम, जंगम, विभूति, रुद्राक्ष, पादादक, प्रसाद, पंचाक्षर। गुरु को देवता से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लिंगम संतों में निहित देवत्व का प्रतीक माना जाता है। जंगम पूरे समुदाय में देवता के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। वह निष्क्रिय सिद्धांत है, शिव सक्रिय है और गुरु दोनों के बीच की कड़ी है। नमः शिवाय का मंत्र धर्म को मानने की स्वीकारोक्ति है और अन्य तत्व संप्रदाय के कर्मकांड हैं। उनमें बलि, उपवास या भोज, तीर्थ यात्राएं नहीं होती। लिंगायतों के लिए कोई नदी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। यदि कोई परिया भी संप्रदाय में सम्मिलित होता है तो उसे भी ब्राह्मण से किसी भी रूप में कमतर नहीं माना जाता। जन्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी लोग अनुपात में पवित्र हैं, क्योंकि वे महान आत्मा के मंदिर हैं। विवाह ऐच्छिक है। विवाह के पहलू वधु की स्वीकृति लेना विवाह ऐच्छिक है विवाह के पहले वधु की स्वीकृति लेना जरूरी है और बाल विवाह को गलत समझा जाता है। तलाक की अनुमति है। विधवाओं के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता है और उन्हें फिर से विवाह की अनुमति है। मृतकों को जलाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। मरणासन्न व्यक्ति को स्नान कराया जाता है। कोई श्राद्ध या मृतक संस्कार नहीं होता। आत्मा के पुनर्जन्म या देहांतर के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जाता। सभी लिंगधारी या दैवी प्रतीक धारण करने वाले साथ में भोजन करते हैं, परस्पर विवाह करते हैं और मिलकर रहते हैं। लिंगायत चरित्र में चरित्र से धर्म प्रेमी, शुद्धतावादी और युद्ध प्रिय होते हैं। वे मुख्यतः कनारा और तेलुगु प्रदेश में पाए जाते हैं। वे बेलगाम, बीजापुर और धारवाड़ जिलों में वे कुल आबादी का 35% है और मैसूर तथा कोल्हापुर राज्यों में उनकी आबादी 10% है। वे स्वयं को वीर शैव अर्थात शिव के पराक्रमी अनुयायी कहते हैं। उन्होंने अपने विचित्र सिद्धांत और सामाजिक संस्थाओं को कब विकसित किया। ब्राउन ने हालांकि मुस्लिम विचारों से समानता देखी, पर वह उसका निष्कर्ष था कि मलयाला के पड़ोसी प्रदेश में ईसाई धर्म के अवलोकन से वे बेहतर धर्म की तलाश की ओर प्रवृत्त हुए, लेकिन यह एक कल्पना ही है। कोंकण समुद्र तट में ईसाई समुदाय के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत खंभात ने क्विलोन तक का पूरा पश्चिमी भारत मुस्लिम बस्तियों से भरा पड़ा है, जो मुस्लिम संवत की शुरुआती सदियों में स्थापित हुई थी। कोंकण समुद्र तट पर मुस्लिम अवशेषों की पड़ताल करने के बाद नायरन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस भाग के मुसलमान, जो शारीरिक रूप से वेशभूषा में और कुछ अन्य रीति रिवाजों में अपने धर्म के दूसरे लोगों से इतने भिन्न हैं कि वे समुद्र तट पर बसे समुद्र प्रेमी अरबों की संतान होंगे, भारत के मुस्लिम विजेताओं की संतान नहीं। यह निष्कर्ष निकालने से रोकना कठिन है कि लिंगायतवाद भारत के इस हिस्से में मुस्लिमों द्वारा डाले गए प्रभाव का परिणाम था। इसके क्रांतिकारी सिद्धांतों और रिवाजों को स्पष्ट करने के लिए कोई भी अनुमान पर्याप्त नहीं है। देहांतर जैसे गहरे पैठे हिंदू विचार का त्याग, अग्नि संस्कार जैसे रिवाजों और शुद्धिकरण वाले मृत्यु समारोह का त्याग, जाति और लिंग की असमानताओं का अंत और विवाह में सुधार, अपने पवित्र गुरु के नेतृत्व में वीर योद्धाओं के समुदाय की अवधारणा और अल्लामा की अवधारणा, जिसका नाम ही मुस्लिम मूल का है, ये अकाट्य रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं कि स्रोत की ओर यानी इस्लाम की ओर इंगित करते हैं। यह सरलता से समझा जा सकता है कि 13वीं सदी के अंत में उनके राज्यों के पतन के बाद और उत्तर भारत से आने वाली मुस्लिम सेनाओं द्वारा उनकी भूमि की विजय के बाद सुधारक अपने द्वारा प्रारंभ किए गए धर्म विच्छेद के प्रभाव से इतने हताश हो गए कि उन्होंने अपने आसपास के अधिक रूढ़िवादी मतावलंबियों के साथ समझौता करने का प्रयास किया, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर या परिस्थितियों के दबाव के कारण या केवल उपेक्षा से अपनी पद्धति की गहरी रूपरेखाओं को कुछ हल्का कर दिया और जाति वैसी विशेषताओं को फिर से उभरने का की क्रमशः अनुमति दे दी। इस प्रकार आज के लिंगायत अन्य हिंदू समुदायों से भिन्न होने पर भी तेजी से उन्हीं के समान हो रहे हैं। उनके प्रारंभिक इतिहास और उसके उतार चढ़ाव की याद अभी भी चन्न बसावा की भविष्यवाणियों में संरक्षित है, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि कलचुरी शासकों के 60 साल बाद तुर्कों में शिव की कृपा से महान पीतांबर पैदा होगा और उसका खानदान इस देश पर 770 साल राज्य करेगा, कल्याण को नष्ट करेगा और कलाबुर्गी का निर्माण करेगा और यह देश तुर्कान्य कहलाएगा। किंतु अंत में महान वसंत राय का उदय होगा, जो विदेशियों को मार भगाएगा, कल्याण का पुनर्निर्माण करेगा, चन्न को अपने राज्य का मंत्री बनाएगा और धर्म की स्थापना करेगा। बसावा के वचनों से लिए गए नीचे लिखे उद्धरण लिंगायतों के सिद्धांत प्रदर्शित करते हैं।